डिस्को की रंगीन रोशनियां लगातार चमक रही थीं। म्यूजिक की तेज धुनों के बीच अदिति अभी भी कबीर को देखकर हैरान थी। तभी उसकी सहेली मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अदिति कुछ बोल पाती उससे पहले ही कबीर हंस पड़ा, जानता हूं। वो आराम से उनके पास आ गया, काफी समय से। सहेली ने उत्सुकता से दोनों को देखा, सच में? हाँ, कबीर ने सहज स्वर में कहा, हम लोग पहले मिल चुके हैं। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे दोस्त कह सकते हो। अदिति ने बस हल्की मुस्कान दे दी। उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका मन वैसे भी पूरी तरह पार्टी में नहीं था। सहेली ने हंसते हुए कबीर का हाथ पकड़ लिया, तुमने कभी बताया नहीं? बताने का मौका ही नहीं मिला? कबीर ने कंधे उचकाए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे मैं इनके पति को भी जानता हूँ, आर्यन सिंह राठौड़। अदिति ने उसकी तरफ देखा, कबीर की आंखों में वही रहस्यमय चमक थी। एक दो बार मुलाकात हुई है, वो हंसा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे ऐसे देखा हो कि कहीं मैं अदिति को उनसे छीन ना लूं। सहेली खिलखिलाकर हंस पड़ी, ओह प्लीज। अदिति भी हल्का सा मुस्कुरा दी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है, कबीर ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ ज्यादा देर तक बनी रही। तीनों कुछ देर तक सामान्य बातें करते रहे, ऑफिस, शहर, पुराने परिचित और इधर उधर की बातें। लेकिन अदिति को धीरे धीरे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने कुछ देर पहले एक ड्रिंक ली थी, बहुत हल्की, लेकिन अब उसके सिर में भारीपन बढ़ रहा था। पहले उसे लगा शायद थकान है, पिछले कुछ दिनों से वो भी ठीक से आराम नहीं कर पाई थी। फिर अचानक उसे हल्का सा चक्कर आया, उसने पास की कुर्सी पकड़ ली। सहेली तुरंत घबरा गई, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, अदिति ने माथा दबाया, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। कबीर ध्यान से उसे देख रहा था, तुम ठीक नहीं लग रही, घर चली जाओ। अदिति ने सिर हिलाया, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। सहेली ने कहा, मैं छोड़ दूँ? नहीं, मेरी कार बाहर है। अदिति ने पर्स उठाया, मैं पहुंच जाऊंगी। कुछ मिनट बाद वो पार्टी से निकल गई। डिस्को के बाहर रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें अपेक्षाकृत खाली थीं। उसने अपनी कार स्टार्ट की, इंजन की आवाज के साथ गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उधर क्लब के अंदर कबीर शीशे की बड़ी खिड़की के पास खड़ा था, उसकी नज़र बाहर जाती हुई कार पर थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न पूरी खुशी न पूरी उदासी, बस एक रहस्यमय मुस्कान। वो तब तक देखता रहा जब तक कार अंधेरे में गायब नहीं हो गई। रात लगभग 11:30 बजे, हवेली में ज्यादातर लोग अपने कमरों में जा चुके थे। आर्यन अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। एक बार उसने घड़ी देखी, अदिति को अब तक लौट आना चाहिए था। उसने फोन उठाया, कॉल मिलाई, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसने सोचा शायद तेज म्यूजिक की वजह से फोन सुनाई नहीं दिया होगा। उसने दोबारा काम में ध्यान लगाने की कोशिश की। उधर हाईवे पर अदिति की कार लगातार आगे बढ़ रही थी। सड़क लगभग खाली थी, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। सिर भारी था, आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी थी। उसने खिड़की थोड़ा नीचे की, ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये अचानक क्या हो रहा है, वो बुदबुदाई। कार थोड़ी डगमगाई, उसने तुरंत स्टीयरिंग संभाला, लेकिन अगले ही पल सामने की रोशनी फैलती हुई दिखाई दी, एक विशाल ट्रक तेज रफ्तार में सामने से आता हुआ। अदिति की आंखें फैल गईं, उसने ब्रेक पर पूरा दबाव डाला, टायर सड़क पर चीख उठे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समय जैसे अचानक धीमा पड़ गया। सामने ट्रक की हेडलाइटें, कानों में गूंजती ब्रेक की आवाज, और अगले ही सेकेंड धड़ाम, एक भयानक विस्फोट जैसी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कार ट्रक से टकराई, लोहे के टुकड़े हवा में बिखर गए, शीशे हजारों टुकड़ों में टूट गए। कार कई बार सड़क पर घूमती हुई दूर जा गिरी। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठने लगी। रात का सन्नाटा एक भीषण धमाके से टूट चुका था। हाईवे पर दूर दूर तक लोग रुकने लगे, किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस को, लेकिन दुर्घटना इतनी भीषण थी कि देखकर लोगों की रूह कांप उठी। उसी समय हवेली में आर्यन का फोन अचानक बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, अनजान नंबर। उसने कॉल उठा ली, हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, क्या आप इस नंबर वाले को जानते हैं? आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। हाँ, मैं उनका पति बोल रहा हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो आवाज आई, सर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। आर्यन कुर्सी से लगभग उछल पड़ा, क्या कहा आपने? उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया। फोन उसके कान से लगा था, लेकिन अब उसे बाकी शब्द साफ सुनाई भी नहीं दे रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, अदिति की कार का एक्सीडेंट हो गया है। और उसी के साथ जैसे उसकी पूरी दुनिया अचानक अंधेरे में डूबने लगी। अदिति की मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन हवेली में ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। जहां पहले हंसी की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। रत्ना देवी और सुषमा देवी की आंखें लगातार रो रोकर सोच चुकी थीं। घर का हर कोना अदिति की याद दिला रहा था। उधर आर्यन अपने कमरे में बैठा था। 3 दिनों में उसने जैसे खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। बिखरे हुए बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर गहरा दर्द। उसके सामने अदिति की एक तस्वीर रखी थी। वो उसे लगातार देखे जा रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। श्यामली अंदर आई, उसके हाथ में चाय का कप था। वो बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, आर्यन कुछ खा लो। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अब भी तस्वीर पर टिकी हुई थी। श्यामली ने लंबी सांस ली। वो पिछले 3 दिनों से हर पल उसके साथ थी, कभी दोस्त की तरह, कभी परिवार की तरह, बस इस कोशिश में कि वो पूरी तरह टूट ना जाए। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन कभी नहीं चाहेगी कि तुम खुद को इस तरह खत्म कर लो। आर्यन की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं बोला। उसी समय कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था, विश्वनाथ। वो दरवाजे तक आया था, लेकिन अंदर नहीं गया, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजर श्यामली के हाथ पर थी जो आर्यन के कंधे पर रखा था, फिर आर्यन के चेहरे पर। दिल में एक अजीब सी टीस उठी। अदिति की मौत का दुख उसे भी था, लेकिन उस दुख के पीछे एक और भावना लगातार सिर उठा रही थी। उस दिन ऑफिस के बाहर देखा हुआ दृश्य और उसके बाद की सारी बातें। उसे लगने लगा था कि उसके और श्यामली के रिश्ते में कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं था। वो कुछ पल और खड़ा रहा, फिर बिना आवाज किए वापस मुड़ गया। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ आदमी बैठा था और बाहर एक ऐसा आदमी जिसे पहली बार अपने ही रिश्तों पर भरोसा कम पड़ने लगा था।